संस्कृति की सीता को लौटाकर लाने का ठीक यही समय। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
संस्कृति की सीता का हुआ अपहरण।
मित्रों, संस्कृति की सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था, तब भगवान रामचंद्र जी राक्षसों समेत रावण को मारकर सीता को वापस लाने में सफल हुए थे। इतिहास की वह पुनरावृत्ति फिर से होनी है। मध्यकाल में हमारी संस्कृति की सीता को वनवास हो गया।
सांप्रदायिकता इस कदर फैली, मत मतांतर इस कदर फैले, बाबाजियों ने अपने अपने नाम के इतने मजहब इस कदर खड़े कर लिए कि हिंदू समाज का एक रूप ही नहीं रहा। संस्कृति के साथ में अनाचार शामिल हो गया।
बुद्ध के जमाने में ऐसा भयंकर समय था कि हमारी संस्कृति उपहास का कारण बन गई थी।
घिनौने उद्देश्यों को संस्कृति के साथ में शामिल कर दिया गया था। पांच काम बड़े घिनौने माने जाते हैं और इन पांचों कामों को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया था और संस्कृति को कलंकित कर दिया गया था।
ये पांचों हैं, मद्यम मांसम तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च पयोतत्वमिद देवी निर्वाण मुक्ति हेत्वे। ये पांचों घिनौने काम संस्कृति के साथ शामिल हो गए। और मित्रों,
यज्ञ का रूप कैसा घिनौना हो गया था आपको मालूम नहीं है? तब मनुष्यों को मारकर होम दिया जाता था और घोड़ों और गौ तक को होम दिया जाता था। यह क्या था?
यह वनवासकाल था।
और अब क्या हो गया? अब बेटे, संस्कृति की सीता रावण के मुंह में चली गई, जहां बेचारी की जान निकल जाने की जोखिम है और जहां से वापस आने का धम दिखाई नहीं पड़ता। सीता राक्षसों के मुंह में से कैसे निकलेगी? चारों ओर समुद्र घिरा हुआ है।
उस समुद्र को कौन पार करेगा?
रावण कितना जबरदस्त है, राक्षस कितने जबरदस्त हैं, इनसे लोहा कौन लेगा? संस्कृति की सीता को वापस लाने का काम कठिन मालूम पड़ता है। अब वह कहाँ चली गई?
वह तो मध्यकालीन युग था, उसमें आस्तिकता फिर भी थी। उस समय किसी कदर आस्तिकता का नाम निशान तो था, राम रहीम का जिक्र तो आता था,
यज्ञ की कोई बात तो कहता था,
धर्म का कोई नाम तो भी लेता था।
नास्तिकों का आज का युग।
लेकिन मित्रों,
आज हम लंका के जमाने में रह रहे हैं, जहां की धर्म को अफीम की गोली कहा जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों में जाए और उनसे जानिए कि धर्म क्या है, तो वे यही कहेंगे कि धर्म माने अफीम की गोली, जिसको खा करके आदमी मदहोश हो जाता है, कर्तव्यों को भूल जाता है। समझदार लोगों में, बुद्धिजीवी वर्ग में संस्कृति के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है, अफीम की गोली। और भगवान के बारे में दार्शनिक नीत्से का एक वचन मुझे बार बार याद आ जाता है और खटकता भी रहता है। नीत्से यूं कहते थे कि खुदा मर गया और मरे हुए खुदा को हमने इतने नीचे दफन कर दिया है कि अब उसके दोबारा जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है।
वह अब दोबारा नहीं जी सकेगा, खुदा को अब हमने मार दिया।
नास्तिक नीत्से कहता था कि खुदा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। जो कुछ खुदा के नाम पर दुनिया में पाया जाता है वह केवल वहम है और हम इस वहम को दुनिया से मिटाकर छोड़ेंगे।
साथियों, नीत्से तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका काम, फिलॉसफी का काम साइंस ने अपने कंधे पर उठा लिया।
साइंस ने कहा कि परमात्मा की अब कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म की कोई जरूरत नहीं है।
डार्विन ने कहा कि अगर आप धर्म के मामले में दखल देंगे तो आदमी को मानसिक बीमारियां हो जाएंगी।
मनोविज्ञानी फ्रॉइड ने कहा कि ये बहन है, ये बेटी है और इसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य है और यह आपका पतिव्रत धर्म है। अगर इस तरह की बेकार की बातें फैला देंगे तो आदमी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएंगे और आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएगी।
आदमी को उच्छृंखल रहने दीजिए, स्वेच्छाचार करने दीजिए। जैसे कि जानवरों में स्वेच्छाचार होता है, वैसे ही आदमी को भी स्वेच्छाचार का मौका मिलना चाहिए। ये कौन कहता था? डार्विन से लेकर फ्रॉइड तक ने यही बातें कही।
इंसानी जीवन तबाह हो जाएगा।
मित्रों,
अभी मैं आपसे विज्ञान की बातें कह रहा था, नास्तिकतावादी दर्शन की बात कह रहा था, लंका की बात कह रहा था। आपको तो मालूम नहीं है, आप तो हमारे संपर्क में रहे हैं, उनके संपर्क में थोड़े ही रहे हैं। आप कम्युनिस्टों के संपर्क में नहीं रहे हैं, आप बुद्धिजीवियों के संपर्क में नहीं रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़े नहीं हैं। कॉलेज में पढ़े होते तो जिस बात का हवाला मैं अभी दे रहा था, इसको बड़ा चढ़ाकर आप कहते और आपका मखौल उड़ाया जाता।
आज बेटे,
हमारी संस्कृति लंका में जा रही है, अब उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अगर संस्कृति वापस ना आ सकी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, दुनिया जिंदा न रह सकेगी, परलोक खराब हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटे,
इन बेकार की बातों को जाने दीजिए। स्वर्ग की, मुक्ति की, परलोक की, चमत्कार की बातें मैं नहीं कहता, मैं तो इंसानी जीवन की बात कहता हूँ, इस संसार की बात कहता हूँ। अगर हमारी संस्कृति और धर्म, जिसको हम आस्तिकता कहते हैं, जिंदा नहीं रही तो दुनिया तबाह हो जाएगी,
हमारे गृहस्थ जीवन का सफाया हो जाएगा।
पारिवारिक जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कि जानवरों में खत्म हो गया है। कुत्ते का कोई कुटुंब होता है?
कोई कुटुंब नहीं होता।
कुत्ते की कोई औरत होती है? कोई नहीं होती। कुत्ते का कोई बाप होता है? कोई नहीं होता। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता अकेला होता है।
मित्रों,
इसी तरीके से इंसान को क्या करना पड़ेगा? कुत्ते के तरीके से अकेले रहना पड़ेगा। और औरत क्या होती है? अरे साहब, धर्मपत्नी को कहते हैं जिसके साथ शादी होती है। शादी किसे कहते हैं? मौसम को शादी कहते हैं।
एक साल एक बीबी से शादी की, अगले साल उसे भगा दिया, दूसरे साल दूसरी शादी कर ली।
तब आप कितने साल तक जवान रहेंगे? हम 50 साल तक जवान रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 50 औरतें आ जाएं। हर साल एक नई आ जाए और दूसरी चली जाए।
बेटे,
यूरोप में यही हो रहा है।
अब स्त्रियां भी इसी तरह करेंगी।
जो बातें मर्दों पर लागू होती हैं, वही बातें औरतों पर भी लागू होती हैं। कोई दाम्पत्य जीवन नहीं है। यह महीने भर पीछे बदल सकता है, दो महीने पीछे बदल सकता है। आज शादी ब्याह हुआ है, कल तक यह चलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे यूरोप में यही हो रहा है।
पारिवारिक जीवन नीरस तहस नहस।
आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप उसे कहते हैं जब तक कि लड़का नाबालिग रहता है और जब तक वह जिसके सहारे रहता है उसका नाम होता है माँ बाप। जब वह बड़ा हो जाता है तब माँ बाप का बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और बेटे का माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। जानवरों में जब तक बच्चा छोटा होता है उसकी माँ उसका ध्यान रखती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सींग मार देती है। नहीं साहब,
बड़े बच्चे से भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों?
बड़े बच्चे से क्यों होनी चाहिए?
छोटे बच्चे को तो नेचर चाहती है कि उसका कोई गार्जियन होना चाहिए।
नेचर के दबाव से क्या चिड़िया, क्या मेढक, क्या औरत, क्या मर्द, सब दबाव मानते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ मोहब्बत खत्म हो जाती है और बच्चे भाग जाते हैं और माँ बाप भी भाग जाते हैं। आज यही हो रहा है।
मित्रों,
आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं?
संस्कृति खत्म होगी तो हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर हमारा बुद्धिवाद जिंदा रहेगा और हमारा अर्थशास्त्र जिंदा रहेगा तो फिर क्या होगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से हमने, आपने, हरेक ने स्वीकार कर लिया है कि बुढ़े बैल को कसाई के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़े बैल को रोटी नहीं खिलाई जा सकती। दुनिया के 99% जानवर कसाई के यहाँ चले जाते हैं।
दूध देने वाले हों चाहे हल में चलने वाले हों, दोनों का अंत क्या होगा?
भाई साहब,
दोनों का अंत कसाई के यहाँ होगा। नहीं साहब,
खूंटे पर बांधकर खिला दीजिए।
नहीं, खूंटे पर बांधकर खिलाने से हमारी जगह घिरेगी और चारा खराब होगा। फिर नए जानवर हम कहाँ से पालेंगे?
इनको हम भूसा कहाँ से खिलाएंगे?
इनकी एक ही रेमेडी है कि इन बुढ़े जानवरों को, चाहे वे गाय हों चाहे वे बैल हों, दोनों को ही कसाई के यहाँ जाना चाहिए।
आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। बूढ़े होने पर 99% जानवर कसाई के यहाँ जाते हैं।
1% अपनी मौत मरते हों तो बात अलग है।
संस्कृति की अवज्ञा के दुष्परिणाम। मित्रों,
अगले दिनों में क्या होगा?
अगले दिनों में बुद्धिवाद आएगा।
और क्या आएगा?
अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र यह कहेगा कि बुढ़े बाप को कसाईखाने भेजना चाहिए। कसाईखाने? हाँ बेटे,
इसके लिए कसाईखाने से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। यह जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है। बुढ़ा हो गया है, अक्ल खराब हो गई है, घर वालों की नाक में दम करता है। इसलिए क्या करना चाहिए?
इसको सीधे कसाईखाने भेजना चाहिए।
चाइना में यह प्रयोग हो रहा है। बुढ़े आदमियों को ले जाते हैं कि चलिए हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहाँ बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए, फिर हम आपको ले जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ भर्ती हो जाए। देखिए कैसा अच्छा इंतजाम है।
अच्छा, आइए बैठिए। 10-5 दिन वहाँ रखा, फिर दूसरी जगह ले गए, एक इंजेक्शन लगा दिया। वह बुढ़ा कहाँ गया?
उसका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वह दूसरे कैंप में चला गया है।
बच्चों ने पूछा, हमारा बुढ़ा कहाँ है? बुढ़ा जहन्नुम में चला गया।
अब क्या होना है? यही होना है। आप में से कोई बुढ़ा तो नहीं है? अच्छा, अभी नहीं है तो थोड़े दिनों बाद हो जाएंगे। यह क्या हो गया? जब संस्कृति की सीता चली गई और वापस नहीं आई तो हरेक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए?
बेटा नीलाम करेगा कि यह बुढ़ा बिकाऊ है, कोई कसाई हो तो ले जाए।
अगर कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी और इसका राष्ट्रीयकरण करेगी।
फिर बुढ़े कहाँ जाएंगे? फांसी घर में। तैयार हो जाइए, भैया आते हैं। अब यही होगा।
तो क्या आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं? संस्कृति रावण के मुंह में चली जाएगी तो क्या होगा?
बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है बेटे। अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है,
इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है कि जो बेकार चीजें हैं, वाहियात चीजें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए या जला दीजिए। बेकार की चीज का हम क्या करेंगे?
बुढ़े आदमी का क्या होगा?
उसकी हमें जरूरत नहीं है।
माँ का क्या होगा? कसाईखाने जाएगी। बाप भी कसाईखाने जाएगा बेटे।
अगले दिनों यही होगा अगर हम संस्कृति को खत्म करते हैं तब।
ऐसे होंगे बेटे हमारे मित्रों, अगर संस्कृति खत्म होती है तो अर्थशास्त्र, बुद्धिवाद, समाजशास्त्र, समाजशास्त्री मान सकते हैं कि ये सारे के सारे भौतिक चिंतन लोगों के सामने मुसीबतें पैदा करेंगे। गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को खत्म करेंगे, बच्चों का भविष्य खत्म करेंगे।
बच्चों का लगाव माँ बाप के प्रति नहीं होगा, माँ बाप का लगाव बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। बुढ़ा अस्पताल में बीमार पड़ा है, छपे हुए कार्ड आते हैं, जैसे ब्याह शादी के कार्ड आते हैं, उन पर लिखा रहता है कि डियर फादर, आप बीमार हैं। नीचे छपा हुआ है सो एंड सो।
आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमको बहुत दुख हुआ, भगवान आपको जल्दी अच्छा करे। बस यूज और नीचे साइन कर दिया और 15 पैसे का टिकट चिपका दिया। कार्ड पर अस्पताल का, वार्ड का नंबर डाल दिया। बुढ़ा सारे मरीजों को कार्ड दिखाता है कि देखिए हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, देखिए हमारे बेटे की बहुत सिंपैथी है,
हमारे लिए वह बहुत शुभकामना करता है। और आपका बेटा, हमारे बेटे की भी चिट्ठी आ गई है, 25 पैसे वाला कार्ड उसने भेजा है।
और देखिए साहब,
हमारे बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा है। अच्छा, तो आपके बेटे की मोहब्बत ज्यादा है और आपके बेटे की कम है। सेवा करने नहीं आया, किस बात की सेवा करने आएगा? आपने बहुत सेवा की है, वह भी सेवा करेगा।
डरावनी अकेली होगी जिंदगी मित्रों, संस्कृति की सीता चली गई तो यही हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा?
संस्कृति चली गई और आदमी को मालदार बना गई, खुशहाल बना दिया। हाँ साहब,
हमें भी मालदार बना दीजिए।
हाँ, हम भी आपको बहुत मालदार बना देंगे, आप निश्चिंत रहिए। कितना मालदार बनाएंगे बेटे?
हम आपको बहुत मालदार बनाने वाले हैं।
हम आपको इतना मालदार बनाएंगे जितने की अमेरिकन नागरिक हैं। अमेरिकन नागरिक कितने मालदार हैं? औसत नागरिक की आमदनी 2000 रुपया मासिक है।
औसत से क्या मतलब है? औसत आमदनी से यह मतलब है कि आप, आपकी बीबी और आपके 2 बच्चे, कुल 4 आदमी हैं, तो आपकी औसत आमदनी 8000 होनी चाहिए ताकि प्रत्येक आदमी के हिस्से में 2000 आ सकें। 8000 आपको कमाना चाहिए ताकि चारों के हिस्से में औसत 2000 आ सकें।
ठीक है, अमेरिका मालदार देश है।
वहाँ क्या हो रहा है
बेटे?
सारे का सारा अमेरिका, जिसमें से 80% नागरिकों की बात मैं कहता हूँ, टेंशन में बेतरह दुखी हैं। टेंशन क्या होता है? तनाव को कहते हैं। तनाव किसे कहते हैं? तनाव उसे कहते हैं कि जब आदमी यह देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं हूँ। अपने को जब आदमी अकेला देखता है तो उसे इतना भय लगता है, जिंदगी इतनी नीरस और डरावनी हो जाती है।
आपको अकेलापन अनुभव हो तो आपकी जिंदगी इतनी नीरस हो जाएगी।
फिर आप कोई परमहंस हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य आदमी है, एकाकी हैं, अकेले हैं, अपस्वार्थी हैं, तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपके दिमाग पर इतना टेंशन रहेगा कि जिसकी वजह से आपकी नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका के अधिकांश नागरिक रात को नींद की गोली खा करके सोते हैं, काम करने के घंटे तो किसी प्रकार से निकाल लेते हैं। 8 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, सो वे उतना समय काट लेते हैं। फिर क्या करें? सारी जगह मरघट सी जिंदगी दिखाई पड़ती है और सारी दुनिया मरघट सी दिखाई पड़ती है। इस मरघट में अब हम कहाँ जाएं?
इधर जाएं तो इधर भी आग, उधर जाएं तो उधर भी आग।
हर तरफ से जिंदगी नीरस दिखाई पड़ती है। उस नीरस जिंदगी में फिर कहाँ जाते हैं
बेटे?
कहीं शराबखानों में चले जाते हैं, कहीं क्लबों में चले जाते हैं, कहीं कैबरे हाउस में चले जाते हैं। ये कैबरे हाउस क्या होते हैं?
पहले औरतें वैसे नाचा करती थी,
अब उस साधारण नाच से आदमी का मनोरंजन नहीं होता, इसलिए उसे कैबरे डांस कहते हैं, जिसमें डांसर एक एक कपड़ा उतारना शुरू करती है। ऊपर से एक कपड़ा उतार दिया, दूसरा कपड़ा उतार दिया, तीसरा कपड़ा उतार दिया, फिर चौथा कपड़ा भी उतार दिया और बिल्कुल मादरजात नंगी हो जाती है।
हाँ साहब, यह नाच कुछ पसंद आया।
कपड़े पहनने वाली से अब मन नहीं भरता, कपड़े पहनने वाले नाच अब घटिया जान पड़ते हैं और बेकार मालूम पड़ते हैं। अब आदमी को जरूरत इस बात की है कि औरत बिल्कुल सारे के सारे कपड़े उतार दे, एक भी कपड़ा बदन पर न हो और तब नाच दिखाए। तभी मन में जरा सी फुरफुरी आती है, मन को अच्छा लगता है।
सारे दिन बिया, सारे दिन शराब, अभी तो नशा कम मालूम पड़ता है। और लाए एक गिलास और लाए।
क्यों? बिना बिया के नहीं रह सकते। नहीं, बिना बिया के दुनिया हमें खा जाएगी।
भूत प्रेतों की दानवीय संस्कृति होगी हावी। मित्रों,
ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये कौन है?
भूत
ये कौन है?
प्रेत
ये कौन है?
डाकू
ये कौन है?
हत्यारे
सब नीरस, सारी की सारी दुनिया नीरस। न मोहब्बत, न कहीं प्यार, न कहीं सहकारिता, न कोई भलमनसाहत।
कहीं कोई किसी का नहीं है। आदमी मशीन के तरीके से भागता हुआ चला जा रहा है। अगले दिनों क्या हो जाएगा?
यही हो जाएगा। अमेरिका का बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि वहाँ तो आधुनिक संस्कृति है। आपकी संस्कृति देव संस्कृति है।
आप देव संस्कृति का परित्याग करते चले जा रहे हैं तो दानवीय संस्कृति आपको यही करेगी। वह आपको पैसा जरूर देगी और सुख सुविधा के साधन देगी, लेकिन लंका में ये सुख सुविधा के साधन क्या कम थे।
आप विश्वास रखिए, आपको भी ये सब मिल जाएंगे।
विज्ञान जितनी तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति के जो साधन चल रहे हैं, बिजली इस कदर पैदा हो रही है कि इससे आपको सुख सुविधा के वे सभी साधन मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। जो लंका में थे वे आपको सब मिल जाएंगे, पर इससे क्या होगा? आप हैरान होंगे। हम आपस में लड़ मर न जाएं। और मित्रों क्या होगा?
वे परिस्थितियां आ जाएंगी जो यादवों के समय आ गई थी। यादवों ने यादवों को खा लिया।
यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा था। यादवों में गृहयुद्ध हुआ था और वे आपस में लड़कर मर गए थे। खानदान वाले खानदान वालों से ही लड़ मरे थे। तो क्या होने वाला है?
बेटे,
हम और आप आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे।
आदमी एक दूसरे को दांतों से चीर डालेगा।
ऐसा संभव है?
हाँ बेटे,
अभी थोड़ी कमी है। अभी हम दांतों से नहीं चीरते हैं, अभी हम आपको अक्ल से चीरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अक्ल से आपको इस तरीके से चीरें कि आपका सारा का सारा खून निकाल लें और आपको कोई बाहरी जख्म भी न होने पाए। अभी हम में इतनी भलमनसाहत और शराफत है। अभी हम आपका खून निकालना चाहते हैं, पर जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमारी निंदा होगी, बदनामी होगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम नहीं पड़ने देना चाहते हैं कि हम आपका खून निकालना चाहते हैं, ताकि आप इतने कमजोर हो जाएं कि आपको मारने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम आपका मांस खाना और खून पीना चाहते थे, वह मकसद हमारा पूरा हो गया है और आप जिंदा भी बने रहे।
साथियों,
अभी कुछ भलमनसाहत जिंदा है, लेकिन अगर संस्कृति की सीता चली गई तो कल क्या होने वाला है कह नहीं सकते।
तब फिर आदमी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है। बिना वजह के उसने कुछ मांगा नहीं है, कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए।
उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन उस गली से निकलते ही एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को चीर डालता है।
आप भी चीरेंगे?
क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है, तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीरेगा?
आदमी आदमी को चीरना चाहिए। अगले दिन ऐसे आएंगे। गुरुजी,
आप क्या बात कर रहे हैं?
बेटे,
मैं यह बात कह रहा हूँ कि संस्कृति जो इंसान को इंसान बनाए हुए है, परलोक की बात मैं नहीं कहता, मुक्ति का जिक्र आपसे नहीं करता,
स्वर्ग की बात आपसे नहीं कहता,
मैं तो आपसे इंसानी जीवन की बात कह रहा हूँ। परलोक की बात जहन्नुम में जाने दीजिए। परलोक कुछ होता है, मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं। मैं तो केवल इस जन्म की बात कहता हूँ। भगवान होता है कि नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तो आपसे दैहिक और दैनिक जीवन की बात कहता हूँ। फिलॉसफी के जंजाल में मैं नहीं फंसता, मैं तो आपको दैनिक और रोजमर्रा के जीवन की बात कहता हूँ।
वापस लाएं प्यार मोहब्बत। मित्रों, संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी और सहकारिता भरती थी।
जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबी में गुजारा करने वाले आदमी अपने अपने छोटे छोटे घरौंदों में रहकर खुशहाल रहते थे,
स्वर्ग का आनंद लूटा करते थे।
मालूम पड़ता है कि वह संस्कृति धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है,
नष्ट होती चली जा रही है।
अब क्या करना चाहिए?
बेटे,
हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा, हमारी संतानों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हुआ है।
इस संस्कृति को वापस लाया जाए।
कहाँ से वापस लाया जाए?
लंका से वापस लाया जाए।
हम और आप कोशिश करेंगे तो इसे लंका से वापस लाया जा सकता है।
नहीं साहब, रावण बहुत जबरदस्त था। हाँ बेटे,
रावण की जबरदस्ती को हम मानते हैं और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसी खाई है और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से लड़ाई लड़ना भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो बेटे इंसानों ने ही किए हैं। कठिन काम भी इंसान ही कर सकते हैं,
हम आखिर इंसान ही तो हैं।
आइए अब संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए चलें।
मित्रों,
संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी जैसी भी हैसियत होगी, कोशिश करेंगे। अच्छे कामों के लिए जब आदमी कमर बांधकर खड़े हो जाते हैं तो भगवान की सहायता उन्हें हमेशा मिली है और हमेशा सहायता मिलेगी।
पहले भी मिलती रही है और अभी भी मिलेगी।
कब मिली थी? अच्छे उद्देश्य के लिए जब आदमी जान हथेली पर रखकर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता है। क्यों साहब, यह बात सही है?
हाँ बेटे, यदि उद्देश्य ऊंचा हो तब सही है, अन्यथा उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान आपको सहायता देगा। इतिहास पढ़ डालिए।
महामानवों के लिए भगवान ने जितनी ज्यादा सहायता दी है, आप पढ़ डालिए।
शुरू से पन्ना पढ़िए, किसी भी क्षेत्र के महामानव और महापुरुष का इतिहास पढ़िए, फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए, ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए, उनको सहायता मिली कि नहीं मिली। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, दैवी सहायता मिलती चली गई। ऊंचे उद्देश्य के लिए। मित्रों,
मैं सीता जी की बात कह रहा था, आप देखिए कि उन्हें किस तरह से सहायता मिलती चली गई। क्यों साहब, पानी के ऊपर तैरते हुए पत्थर कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते, पानी में डालते ही पत्थर डूब जाता है।
पत्थरों के माध्यम से भगवान ने सहायता की थी। ऐसे पुल बनाए गए थे जिनमें की खंभे नहीं लगाए गए थे।
इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। समुद्र के ऊपर पत्थर फेंकते ही वे तैरने लगे और पुल बना दिया गया। अचंभे की बात है ना, लोगों की समझ में नहीं आती।
बेटे,
यह समझ में आएगी भी नहीं। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता सकता हूँ जिनमें की पत्थर ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैरे हैं।
जो ऊंचा उद्देश्य लेकर के चले हैं और जान हथेली पर लेकर चले हैं और ईमानदारी से चले हैं, उनके पत्थर तैरे थे और फिर तैरेंगे।
नहीं साहब,
पत्थर नहीं तैरेगा। हाँ बेटे, पत्थर नहीं तैरेगा।
यह अलंकार है।
इसका मतलब यह है कि साधन कम हो, सामर्थ्य कम हो, तो भी सफलता मिलेगी।
पत्थर तैरने से हमारा मतलब यही है। पानी पर पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता, इससे कोई मतलब नहीं है।
महाराज जी,
और क्या हो सकता है? और बेटे,
समुद्र को छलांगा जा सकता है।
आदमी की छलांगने की ताकत 10 फीट हो सकती है, 12 फीट हो सकती है, 15 फीट हो सकती है। बंदर के छलांगने की ताकत, लंगूर के छलांगने की ताकत मान लें कि ज्यादा से ज्यादा 25 फीट हो सकती है, 30 फीट हो सकती है, 40 फीट हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 50 फीट हो सकती है। नहीं साहब,
बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो बेटे, बंदरों ने समुद्र छलांगा था।
अच्छा, आदमी कितना वजन उठा सकता है? 20 किलो उठा सकता है। नहीं साहब, 40 किलो उठा सकता है। नहीं साहब,
हमने एक पल्लेदार को अपनी पीठ पर एक क्विंटल की बोरी लाते हुए देखा था।
चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि आदमी 1 क्विंटल वजन उठा सकता है, तो क्या वह पहाड़ भी उठा लेगा? नहीं साहब, पहाड़ तो नहीं उठा सकता। पहाड़ नहीं उठा सकता तो देख, हनुमान जी ने ऊंचे उद्देश्य के लिए पहाड़ उठाया था कि नहीं? ऊंचे उद्देश्य के लिए जब आदमी कमर कसकर खड़े हो गए हैं तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम करके दिखाया है।
हनुमान जी ने सीता जी को वापस लाकर दिखाया था। हो सकती है पुनरावृत्ति। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति फिर होना संभव है? हाँ, इतिहास की पुनरावृत्ति होना संभव है और हम करके दिखाएंगे। मित्रों,
संस्कृति की सीता को, जिसके बारे में पहले यह मालूम पड़ता था कि उसको वनवास हो गया और वह रावण के घर में कैद हो गई, अब वहां से उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी रीच वानरों के साथ मिलकर उन्हें वापस लाने में समर्थ हुए थे।
मित्रों, हम भी संस्कृति की सीता को लौटा कर ले आएंगे। क्यों?
क्योंकि उससे सारी मनुष्य जाति का भविष्य और भाग्य जुड़ा हुआ है, उससे विश्व शांति जुड़ी हुई है, उससे हमारी पीढ़ियों का और औलादों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस सुंदर दुनिया को भगवान ने बड़ी शान से बनाया है, वह उसकी इच्छा पर टिकी हुई है और उसी से हमारे इंसानी जीवन की सार्थकता टिकी हुई है। इंसान के जीवन के लिए सार्थकता की दृष्टि से जो काम सुपुर्द किए गए हैं, उन्हें भी हम कर सकते हैं। इन सब बातों की वजह से संस्कृति की सीता को वापस लाने का आज हमारा काम है और आप सबको इसी योजना में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। बस हमारा यही एक मकसद है, दूसरा कोई नहीं है। आइए आप और हम मिलकर संस्कृति की सीता को वापस लाने की कोशिश करें।
क्रमशः
विगत जून माह में गुरुसत्ता के प्रवचन पर आधारित इस लेखमाला की प्रथम किस्त में आपने पढ़ा कि इतिहास की पुनरावृत्ति पुनः होनी है।
मध्यकाल में हमारी संस्कृति को वनवास हो गया था,
उसे कलंकित कर दिया गया था,
नास्तिकता ही संव्याप्त हो गई। नीचे के साथ विज्ञान की स्वेच्छाचारिता की हिमायत के नमूने दिए गए।
पूज्यवर कहते हैं कि अगर संस्कृति वापस न आ सकी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। हम आज संस्कृति को दूषित कर अपसंस्कृति ला रहे हैं, जो विनाश का कारण बन रही है। वृद्धों का तिरस्कार हो रहा है। आज की पीढ़ी अपने माता पिता को स्वीकार नहीं करती।
उन्हें कसाईखाने भेज दे तो अतिरंजित नहीं मानना चाहिए। निश्चित ही पैसा आया है,
लोग मालदार बने हैं, पर जिंदगी तबाह हो गई है। नशेबाजी बढ़ी है,
मोहब्बत, प्यार, भलमनसाहत गायब होती जा रही है।
यह दानवी संस्कृति है।
आज ऊंचे उद्देश्यों के लिए मर मिटने वाले हनुमानों की जरूरत है, जो सीता को वापस ला सकें। हम संस्कृति की सीता को वापस लाएं। अब आगे पढ़ें। गिद्ध गिलहरी बन सकते हैं। साथियों,
मैं जानता हूं कि आपके पास ताकत बहुत कम है और आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सकें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गिलहरी, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और जिसके पास पंजे भी नहीं थे, वह अपने बालों में धूल भरकर डालती थी। आप गिलहरी से तो कमजोर नहीं हैं।
नहीं साहब,
गिलहरी से तो कमजोर नहीं है।
तो भाई साहब,
आप भी कुछ कर सकते हैं।
और गिद्ध, गिद्ध तो बूढ़ा था,
उसे आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता था कि लड़ाई में पड़े। लेकिन बुढ़ा, जिसको आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता था और वह आदमी भी नहीं था, पक्षी था। आप तो पक्षी नहीं हैं।
नहीं साहब, आदमी हैं।
आप बातचीत तो कर सकते हैं।
हाँ साहब,
कर सकते हैं। आपके दो हाथ और दो पैर हैं, पर उस गिद्ध के तो दो ही थे।
बेटे,
जब बूढ़ा गिद्ध युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं? जब ग्वाल बाल पहाड़ उठाने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए अपनी लाठी और डंडे ले करके खड़े हो सकते थे। क्रेन उनके पास नहीं थी और न कोई ऐसी दूसरी चीज थी जिससे कि पहाड़ उठाया जा सके। कोई संबल भी नहीं थे, कोई कुछ नहीं था।
वही जानवर हांकने की लाठियां थी, उन्हें ले करके खड़े हो गए थे।
तो क्या पहाड़ उठ गया था?
हाँ,
उठ गया था।
क्यों? क्योंकि ऊंचे उद्देश्य के लिए भावभरे प्राणवान व्यक्ति प्राणभरी सांस लेकर जब खड़े हो जाते हैं तो उनको भगवान की सहायता मिलती है। हमको मिलेगी?
नहीं, आपको नहीं मिलेगी।
क्यों?
क्योंकि आप हैं चोर, आप हैं चालाक। चोर और चालाकों के लिए भगवान की सहायता सुरक्षित नहीं है।
हमको मकान बनवा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हमारी औरत को जेवर बनवा दीजिए।
चल, धूर्त कहीं का, भगवान की सहायता इन्हीं कामों के लिए रह गई है।
नहीं साहब, देवी को सहायता करनी चाहिए थी।
कौन है तू? देवी का जवई है। चांडाल कहीं का, देवी को हमारी सहायता करनी चाहिए थी। किस बात की देवी सहायता करे?
नहीं साहब, हमारी मनोकामना पूरी करे।
क्यों पूरी करनी चाहिए? हमने तीन माला जप किया है।
ले जा अपनी माला।
माला लिए फिरता है।
देवी को माला पहना देंगे, नारियल खिला देंगे, देवी को धूप बत्ती दिखा देंगे, खाना खिला देंगे और मनोकामना पूरी करा लेंगे। महाराज जी,
अब तो आप देवी की निंदा कर रहे हैं।
नहीं बेटे, देवी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वरन तेरे ईमान की निंदा कर रहा हूँ। तू जिस ईमान को ले करके चला है, जिस उद्देश्य को ले करके चला है, मैं उस उद्देश्य की निंदा कर रहा हूँ।
उसकी ओर से देवी को नफरत है और देवी तेरी ओर मुंह उठा करके भी नहीं देखेगी।
लक्ष्य उद्देश्य ऊंचे हैं कि नहीं? मित्रों,
देवी किसकी सहायता करती है? देवी जप करने वाले की सहायता नहीं करती, पाठ करने वाले की सहायता नहीं करती।
देवी उनकी सहायता करती है जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, जिनके सामने कोई मकसद है, जिनके सामने कोई उद्देश्य है।
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब आदमी उठ खड़े होते हैं, तब देवताओं की भरपूर सहायता मिलती है। देवताओं को आपने देखा नहीं है? बीसियों जगह विवरण आता है जहां देवता फूल बरसाने आए।
क्यों साहब, देवताओं का केवल यही काम है फूल बरसाना।
यह क्या बात है? क्या वे कौम के माली हैं? इनके यहाँ फूलों की खेती होती है। जहाँ कहीं भी शादी होती है, अच्छा काम होता है, वे फूल लेकर के जाते हैं और बिखेर देते हैं और पीछे से पैसे मांगते हैं।
लाए 8.5 रुपये, हमने आपके यहाँ फूल बरसा दिए।
देवताओं को और कोई काम नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं फूल बरसाते रहते हैं। रामायण में आप पढ़ लीजिए, बीसियों जगह फूल बरसे हैं।
रामचंद्र जी जब पैदा हुए तब बरसे।
रामचंद्र जी का विवाह हुआ तब बरसे। देवताओं ने विमान पर चढ़ करके फूल बरसाए। हम जहाँ भी पढ़ते हैं और दूसरी बात दिखाई नहीं पड़ती।
क्यों साहब, देवता फूल बरसाते हैं।
हाँ बेटे, लेकिन फूल बरसाने से मतलब है सहयोग करना, सहकार करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना और सहायता देना। देवता हमेशा ऐसों पर फूल बरसाएंगे।
मित्रों, देवता हमेशा फूल बरसाते हैं और हमेशा बरसाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बरसाएंगे जो कोई ऊंचा उद्देश्य लेकर के चलेंगे, जो कोई ऊंचा मकसद लेकर के चलेंगे,
जो कोई ऐसा काम ले करके चले हैं जिससे कि विश्वहित जुड़ा हुआ हो, जिससे किन्हीं सिद्धांतों का परिपालन होता हो, किन्हीं आदर्शों का परिपालन होता हो, उनके लिए देवता की सहायता सुरक्षित है, लेकिन उनके लिए सुरक्षित नहीं है जो कर्महीन, कर्म से भागने वाले, परिश्रम से जी चुराने वाले, हराम में देवताओं की कृपा मांगने वाले हैं। देवताओं के दरवाजे इनके लिए बंद हैं।
देवता उनकी सहायता करेंगे?
नहीं करेंगे।
क्योंकि जो देवता को अनैतिक बनाता है, जो देवता को अंधेरगर्दी का माध्यम बनाता है, नीति और मर्यादा को तोड़ देने वाला बनाता है। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, नीतियां तोड़ डाली, अब क्या देवता को भी अपने जैसा बनाएंगे?
आप देवता जैसे नहीं बन सकते, तो कम से कम इतनी कृपा कीजिए कि देवता को अपने जैसा मत बनाए, देवता को अपने जैसा घिनौना मत बनाए जो अकर्मण्य लोगों की, स्वार्थी लोगों की, चालाक लोगों की, बेईमान लोगों की, बदमाश लोगों की सहायता करे।
यह तो मत कीजिए, देवता की इज्जत की रखवाली तो कीजिए, देवता को तो बेइज्जत मत कीजिए, देवता को तो चरित्रवान रहने दीजिए, देवता को तो विवेकशील रहने दीजिए।
नहीं साहब, हम जैसे मरे हैं वैसे ही उन्हें भी मारेंगे। कहावत है, कोड़ी मरे संगाति चाहे, हमें तो कोड़ हो गया है, अब क्या करेंगे? जो कोई हमारी चपेट में आएगा उसको भी कोड़ी बनाएंगे।
किसको कोड़ी बनाएंगे?
अब तो और कोई चपेट में नहीं आता, आदमी तो हमसे दूर भागता है, अब तो एक ही आदमी बेवकूफ रह गया है और उसका नाम है देवता। उसी को कोड़ी बना देंगे, अर्थात अनैतिक कामों के लिए, हरामखोरी के कामों के लिए हम देवता से यह कहेंगे कि हमारी सहायता कीजिए। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, अवतारों के साथ आते हैं देवता।
मित्रों,
क्या करना पड़ेगा हमको और आपको? यदि देवता के प्रति वास्तव में प्यार है तो हमें देवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता के मार्ग पर चलना किसे कहते हैं? इसके लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। जब दुनिया से पाप का हरण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था तो देवताओं ने कहा था कि भगवान जी आप चलते हैं।
हाँ साहब, अब आप अवतार लेंगे। हाँ साहब, अवतार लेंगे तो आप अकेले काम नहीं कर सकेंगे।
अकेला काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, आप अकेले पुल नहीं बना पाएंगे, आप अकेले पहाड़ नहीं उखाड़ पाएंगे, आप अकेले इतने राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए सहायकों की जरूरत है।
बेशक उनके साथ सहायक आए थे।
कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों के वेश में हम जाएंगे, जन्म लेंगे। मनुष्य तो बड़ा चालाक है, उसका सारे का सारा दायरा ऐसे बदमाशों से भरा पड़ा है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो हमारी अकल खराब करने के लिए हजार आदमी आ जाएंगे।
हमारी औरत आ जाएगी, हमारा बाप आ जाएगा, हमारा भाई आ जाएगा, हमारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारा साला आ जाएगा, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा काम मत कीजिए, त्याग बलिदान की बात मत सोचिए, माल मारने की बात सोचिए, डाका डालने की बात सोचिए।
हर आदमी की एक ही सलाह रहेगी, दूसरी सलाह मिलेगी नहीं, जिससे कि शायद हमारा ईमान खराब हो जाए, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने क्या किया? सारे के सारे देवता रीछ और वानरों के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ गए। उन्होंने वह काम किया था जो देवताओं को करना चाहिए। किन किन ने किया था? रीछों ने किया था, वानरों ने किया था। देवता भी बार बार अवतार लेते रहे हैं। वे दुनिया में किस काम के लिए अवतार लेते रहे हैं? देवता दुनिया में किस काम के लिए आते रहे हैं? वे केवल एक काम के लिए आते हैं, श्रेष्ठ कामों के लिए सहायता करने के लिए। देवता श्रीकृष्ण भगवान के जमाने में भी आए थे। कौन कौन आए थे?
पांडव कौन थे? पांडव मनुष्य थे?
नहीं, मनुष्य नहीं थे, कुंती से पूछो कि कौन थे। भगवान श्रीकृष्ण जब आए थे तो उन्हें देवताओं की सहकारिता की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं ने जन्म लिया था।
पांच पांडव कौन थे? देख, उनमें से एक सूर्य का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक पवन का बेटा था, दो अश्विनी कुमार के बेटे थे।
सब देवताओं के बेटे थे।
तो क्या किया उन्होंने? माल मारा,
मकान बनाए,
जायदाद बनाई,
औरतों के लिए सोने के जेवर बनाए। क्यों साहब? जो देवता जितना बड़ा मालदार, वह उतना ही बड़ा भाग्यवान होता है।
भगवान जिसको जितनी दौलत दे, वह उतना ही भाग्यवान होता है।
नहीं बेटे,
आध्यात्मिक दृष्टि से वह भाग्यवान नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है जिसने जितना त्याग करके दिखाया है, जिसने जितना साहस करके दिखाया है।
देवत्व आता है तो आचरण से शिक्षण देता है।
मित्रों,
पांडवों का जीवन आरंभ से लेकर अंतिम समय तक कठिनाइयों का जीवन है, मुसीबतों का जीवन है, कष्टों का जीवन है। श्रेष्ठ कामों के लिए जो आदमी कष्ट उठा सकते हैं, त्याग कर सकते हैं और मुसीबतें सह सकते हैं, देवता उन्हीं का नाम है।
नहीं साहब, देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका घर सोने का बना देते हैं, उसके बेटे को इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। बकै मत।
देवत्व जिसके भीतर आता है वह दूसरों का अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण करता है। क्या हम अपने सिद्धांतों के प्रति पक्के और सच्चे हैं? हम कैसे माने कि आप सच्चे हैं और पक्के हैं?
नहीं साहब, हम सच्चे और ईमानदार हैं।
हमें नहीं मालूम कि आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन परीक्षा के बिना हम कैसे जानेंगे कि आप सच्चे हैं कि अच्छे हैं? हर आदमी को अपने सच्चे होने की और अच्छे होने की परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा कैसे हो सकती है
बेटे?
कठिनाइयों से होती है। और कैसे होती है?
नहीं साहब, आप इम्तिहान ले लीजिए,
आप सवाल पूछ लीजिए, हम लिखकर दे देंगे।
बेटे,
इसमें सवाल नहीं पूछा जाता, वरन चरित्र के माध्यम से पता लगाना पड़ता है कि व्यक्ति जबान से जिन सिद्धांतों को बक बक करता है और जब मुसीबत का वक्त आता है, कठिनाई का वक्त आता है, तो उनका पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता।
साथियों,
इसकी एक ही परीक्षा है, दूसरी कोई नहीं है, कि आप कठिनाइयों में सही साबित होते हैं कि नहीं।
यह बताइए,
लोभ का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? मोह का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? सिद्धांतों के प्रति जिनकी आप हर वक्त दुहाई देते रहते हैं, उनका रक्षण करने के लिए लोभ का दबाव, मोह का दबाव आप मानते हैं कि नहीं? इंसान के बाहर वाले हिस्से पर पड़ने वाले दबाव तो कई हो सकते हैं, लेकिन भीतर वाले हिस्से पर बस दो ही दबाव दुनिया में काम करते हैं, एक लोभ का, दूसरा मोह का, जो हमको सिद्धांतों की तरफ नहीं बढ़ने देते। लोभ और मोह से, चैन और आराम से, खुशहाली और ऐयाशी से अपने आप का बचाव करके जो आदमी सिद्धांतों के लिए अग्नि परीक्षा में चढ़ सकते हैं, वही आदमी देवता कहला सकते हैं।
श्री कृष्ण भगवान के साथ भी देवता आए थे।
और कौन कौन के साथ में आए थे
बेटे?
सबके साथ में देवता आए थे। भगवान के साथ साथ में देवता हमेशा आते रहे हैं। देवता आपके अंदर भी है।
साथियों,
हमको और आपको जो काम करना है, मैंने आपको उसकी याद दिलाई कि पुराने जमाने के इतिहास से आप संगति मिलाते हुए अपना मुंह शीशे में देख सकते हैं। आपके भीतर भी एक ऐसा ही देवता झांकता हुआ मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। शायद आपके भीतर से कोई हनुमान झांकता हुआ दिखाई दे। दुनिया को आप देखते हैं कि नहीं, कभी अपने आप को भी देखना, तब आप अपने भीतर की बुराइयों को भी देखेंगे, पर मैं चाहूंगा कि आप अपने भीतर में देवता की झांकी करें। आप अपने भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व की झांकी करें जो पाप के पंख में फंसा हुआ सा नहीं है, पर उसे मौका मिले तो वह हनुमान जैसी भूमिका भी निभा सकता है और नल नील जैसी भूमिका भी निभा सकता है और इतिहास में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप अपनी भूमिका निभा पाएं, इसलिए आपको आत्मबोध कराने के लिए, आपकी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए, आपके लिए जो उचित काम है, कर्तव्य है, उसका उद्बोधन कराने के लिए यहाँ आपको बुलाया गया है। यह वक्त बार बार नहीं आएगा
बेटे,
यह युग बदलने का वक्त है, युग संध्या का वक्त है, यह बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आया है और यह चला जाएगा,
दोबारा नहीं आ सकता।
गांधी जी का 79 आदमियों का जत्था जिस समय नमक बनाने के लिए गया था, मैं भी उन दिनों वहीं था। साबरमती के आश्रम में गांधी जी के पास में रहता था। क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए नाबालिग होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप वहां नहीं जा सकते। आपकी उम्र छोटी है, इसलिए हम नमक सत्याग्रहियों में आपको लेकर नहीं चलेंगे।
हमको नहीं लिया गया, लेकिन 79 आदमी जो नमक बनाने के लिए गए थे, उन सत्याग्रहियों की फिल्म जब देहरादून आई तो हमने वह फिल्म देखी।
U0P0 सरकार की फिल्म हम मंगाते रहते हैं।
हमारे पास फिल्म प्रोजेक्टर था, यहाँ बच्चों को, लड़कियों को दिखाते रहते थे। हमने गांधी जी की वह फिल्म देखी जिसमें वे नमक बनाने के लिए गए थे।
79 आदमियों में से एक एक कर सामने आते चले गए।
हरिभा उपाध्याय आते चले गए, महादेव भाई देसाई आते चले गए। गांधी जी लाठी लेकर डांडी यात्रा में चल रहे हैं।
वहां बरगद के पेड़ के नीचे ठहर रहे हैं। बाकी सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद एक चल रहा है। हम नहीं जा सके। हमारे मन में आया कि अगर मैं भी 18 वर्ष की उम्र का रहा होता और भगवान ने अगर मौका दे दिया होता और मैं भी गया होता तो हमारी भी फिल्म सारे भारतवर्ष में दिखाई जाती और राजेश खन्ना की तरह से हमको भी लोग समझते, पर क्या करें, समय था जो निकल गया।
तो क्या वह मौका दोबारा आएगा बेटे?
अब तो हम 70 साल के हैं। अब अगर गांधी जी होते तो हम कहते कि अब आप हमको लेकर चलिए और हमारी भी फिल्म खींचवा दीजिए।
बेटे, अब नहीं खींच सकती, क्योंकि वह मौका चला गया।
आपके बिना भी युग बदल जाएगा।
मित्रों, यह कौन सा मौका है?
युग बदल रहा है और आपके लिए युग बदलने की भूमिका दिखाने का मौका है।
आप दोबारा मौका देंगे? बेटे, यह दोबारा नहीं मिल सकता।
यह मौका, जिसमें आपको याद दिलाने के लिए बुलाया गया है, आप चाहें तो इस मौके का लाभ उठा लीजिए, अन्यथा एक बात मैं कह देता हूँ कि आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है।
सीता वापस आ जाएगी। हाँ, सीता वापस आ जाएगी। युग बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा, हमारे बिना भी बदल जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बिना भी बिल्कुल बदल जाएगा। फिर क्या हर्ज होगा? आपका ज्यादा हर्ज होगा, आप पछताते रहेंगे।
जिस तरीके से कांग्रेस के आंदोलन में जिन जिन लोगों को 3 महीने की सजा हुई थी, उनको 250-250 रुपये की पेंशन मिल रही है।
जिनको 3 महीने की सजा हुई थी, आजकल वे मिनिस्टर हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी कैसा होता है? बेटे, स्वतंत्रता सेनानी बड़ा जबरदस्त होता है। कैसे?
ऐसे, जो 3 महीने जेल रह आया, वह स्वतंत्रता सेनानी हो जाता है।
गुरुजी, 3 महीने जेल जाने पर कोई आदमी ज्यादा दुखी तो नहीं होता? बेटे,
हम तो 4.25 बरस रहे हैं।
हमारा तो कुछ खराब नहीं हुआ।
हम बहुत अच्छी तरह रहे हैं।
साहब,
हमको भी 3 महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए।
तो फिर तू क्या करेगा? मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र दिखाऊंगा और फिर मिनिस्टर भी हो सकता हूँ और M0LOAO का चुनाव भी लड़ सकता हूँ। यह तो ठीक है, तो आप भिजवा दीजिए। हाँ बेटे, भिजवा दूंगा।
अब जेल जाएंगे तो किस काम का?
अच्छा बेटे, एक काम कर, अपने यहाँ जुए का एक अड्डा बना ले और सारे मोहल्ले वालों को बुलाकर जुआ खेल। फिर मैं क्या करूँगा? पुलिस वाले के पास जाऊंगा और चुपचाप कह दूंगा कि भाई साहब, मेरे साथ चलिए, अभी मैं जुआरियों को गिरफ्तार कराता हूँ।
खत से पुलिस आ जाएगी और पैसे समेत तुझे और तेरे साथियों को पकड़ ले जाएगी।
फिर क्या होगा?
फिर तुझे 3 महीने की जेल हो जाएगी और तेरे जितने संबंधी हैं, उन सबको जेल हो जाएगी।
तेरे साथ साथ में उन सबको फाइन लग जाएगा, वे भी सब जेल चले जाएंगे।
फिर क्या हो जाएगा?
वे सब मिनिस्टर हो जाएंगे।
तू मिनिस्टर हो जाना, तेरे बहनोई, साला, पड़ोसी, नौकर चाकर, जो भी जुए में पकड़े जाएंगे, वे सब जेल चले जाएंगे और सब मिनिस्टर हो जाएंगे और सबको 250-250 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी।
गुरुजी,
आप तो मजाक करते हैं।
बेटे, बिल्कुल मजाक कर रहा था।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप सच सच बताए कि कोई और रास्ता है? हम 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहे तो छुट्टी ले लेंगे, अपनी खेती का खर्च कर देंगे, खेती के लिए नौकर रख लेंगे, पर आप हमको जेल भिजवा दीजिए और 250 रुपये महीने की पेंशन दिला दीजिए।
बेटे,
अब हम नहीं दिला सकते।
अब वह मौका चला गया।
जब मौका था, तब तेरे पास दिल नहीं था और जब यह समय आ गया है, तब औरों को देख करके कहता है कि हमको भी पेंशन दिला दीजिए।
जब समय था तो नल नील भी इतिहास प्रसिद्ध हो गए थे, गीत भी हो गए थे, गिलहरी भी हो गई थी, जामवंत भी हो गए थे। अब वह समय चला गया।
अब क्या रखा है? यह युग परिवर्तन की वेला है।
मित्रों,
यही समय है जिसके लिए मैं आपको याद दिलाता था और इसीलिए इस शिविर में आपको बुलाया है। अगर आप समय को परख सकते हो, समय को देख सकते हो, समय को जान सकते हो, तो आप यह देख ली कि यह युग परिवर्तन का समय है। इससे अच्छा, बेहतरीन समय शायद आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा और मैं तो केवल आपके जीवन की बात नहीं करता हूँ, हजारों वर्षों तक ऐसा समय नहीं आएगा जैसे कि हम और आप जिस समय में बैठे हुए हैं। इस समय में क्या करना चाहिए?
बेटे,
आपको एक ही काम करना चाहिए कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और मशक्कत करनी चाहिए।
अच्छा, आप कार्यक्रम बताइए। बेटे,
आपके सामने जो कार्यक्रम पेश किया है, आज की परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा नहीं हो सकता। आज की क्या परिस्थिति है? आज की परिस्थिति एक ही है कि आज के युग का जो रावण है वह क्या है, इस युग की पूतना क्या है, इस युग की ताड़का क्या है, इस युग की सूर्पणखा क्या है, इस युग की सुरसा क्या है। इस युग की एक ही सुरसा है जिसका नाम है बेअकली। आदमी के अंदर बेअकली इस कदर हावी हुई है कि जब से दुनिया बनाई गई तब से आज का दिन है, मैं सोचता हूँ कि बेअकली का दौर इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। आज आदमी कितना शिक्षित होता हुआ चला जाता है, पर बेअकली की हद है। कहाँ तक पढ़ा है, पढ़ने वाले के ऊपर लानत, जाने कहाँ तक पढ़ते जाते हैं।
B0A0 पास है, M0A0 पास है। अच्छा, तो यह कमाता तो जरूर होगा। मैं जानता हूं कि B0A0 पास को 250 रुपये मिलते होंगे, तो M0A0 पास को 400 रुपये मिलते होंगे। इतना तो इनको मिलता ही होगा, लेकिन बेकली के मामले में ये वो आदमी हैं, जिनको मैं बेहुदा शब्द कहूँ तो भी कम है।
आदमी जीवन की समस्याओं के बारे में इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार है कि जिसके दहकों का ठिकाना नहीं है। जहाँ भी वह रहता है क्लेश पैदा करता रहता है। दफ्तर में रहता है तो क्लेश पैदा करता है, जहाँ कहीं भी जाता है क्लेश पैदा करता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। यह बेअक्ल आदमी है जिसको जिंदगी का मजा, जिंदगी का सौंदर्य, जिंदगी का सुख लेना आता ही नहीं। जिंदगी का सुख और सौंदर्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें क्या विचार करना चाहिए, हमको मालूम ही नहीं है। घर घर जाकर बेअक्ली दूर करनी होगी।
मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? आज के जमाने में सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि हमको जन जन के पास जाकर के उनकी बेअक्ली को दूर करना पड़ेगा। जहां जहां तक वह फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हमको वह काम करना पड़ेगा जो परिव्राजक अभियान के अंतर्गत हमारे प्राचीन काल के ऋषि किया करते थे, मध्यकालीन तीर्थयात्री किया करते थे, अंतिम समय में भगवान बुद्ध के शिष्यों परिव्राजकों ने किया था। आपको यही करना पड़ेगा। घर घर में जाना पड़ेगा,
घर घर को जगाना पड़ेगा।
घर घर में जो अवांछनीयता की और अनैतिकता की बीमारियां फैली पड़ी हैं, घर घर में दवा बांटनी पड़ेगी। आपको घर घर में D0D0T0 छिड़कनी पड़ेगी। घर घर में इसके छिड़काव की जरूरत है क्योंकि मलेरिया बहुत जोर से फैल गया है। मलेरिया के मच्छर बेहिसाब से आ रहे हैं।
घर घर जाइए।
नहीं साहब, मच्छरों को यहीं बुलाकर लाए और जो घर की सीलन है सबके यहाँ खबर भेजिए कि लिफाफे में बंद कर डाकखाने के माध्यम से हमारे पास मच्छरों को भेज दें।
मलेरिया के मच्छर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम सबको पकड़ लेंगे। भाई साहब,
मलेरिया के मच्छर आपके यहाँ नहीं आ सकते, आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं। मलेरिया आपके यहाँ नहीं आएगा, आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। आप D0D0T0 लेकर घरों में जा सकते हैं। घर आपकी D0D0T0 के पास नहीं आएंगे। जनजागरण हेतु बड़ी सेना की तैयारी।
इसलिए मित्रों,
आज का सबसे बड़ा काम वह है जो हम आपके सुपुर्द करते हैं। क्या सुपुर्द करते हैं? जनजागरण का काम करना पड़ेगा,
जनसाधारण को जगाना पड़ेगा।
फिर आदमी का वह शिक्षण करना पड़ेगा जिससे उसकी विचारणा और उसके चिंतन को नए सिरे से दिशा दी जा सके, नए सिरे से उसमें हेर फेर पैदा किया जा सके। अगले दिनों हमको यही करना पड़ेगा।
अगले दिनों आपकी वानप्रस्थ योजना, जो बड़ी समर्थ योजना है, बड़ी सशक्त योजना है, बड़ी सांगोपांग योजना है, को चलाएंगे।
आप इतनी बड़ी योजना चलाएंगे?
हाँ बेटे,
इतनी बड़ी योजना चलाएंगे।
अब तक हम अकेले काम करते थे, तब हमारे पास क्या था, बस 2-4-10 आदमी गायत्री तपोभूमि पर रहते थे, 5-50 आदमी और थे जिन्हें जहाँ तहाँ भेजते थे।
अब क्या करेंगे? अब बेटे,
हम क्रमबद्ध रूप से परिव्राजक योजना को चलाएंगे। पहले शिविर में आपके जितने आदमी थे,
दोनों शिविरों को मिलाकर 300 के करीब हो जाते हैं। ये सब के सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए यहाँ शिविर में जो आते हैं उतने ही आदमी नहीं हैं।
हम अपने सारे के सारे गायत्री परिवार के लोगों को जगाएंगे और बुलाएंगे।
समयदानियों से लेकर के वरिष्ठ वानप्रस्थों तक की कितनी बड़ी सेना बना लेंगे?
हम 1,00,000 पादरी बनाएंगे। मित्रों,
हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर की, उसी संख्या में सेना बना दें जितनी की भगवान बुद्ध बनाने में समर्थ हुए थे। 1,00,000 के करीब उन्होंने शिष्य बनाए थे और ईसाई मिशन के पास भी 1,00,000 के करीब पादरी हैं। आप भी इतनी हिम्मत करते हैं?
बेटे, कोशिश करेंगे।
इतने आदमी यहाँ शांतिकुंज में तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि हम गाँव गाँव में और देश देश में और घर घर में शांतिकुंज बनाएंगे और जागृत केंद्र बनाएंगे। वहाँ से फिर ईसाई मिशन के तरीके से हम नए वानप्रस्थ पैदा कर सकते हैं।
बेटे, हमारे ख्वाब बड़े महत्वाकांक्षी हैं।
आगे क्या होगा
भगवान जाने, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर ऐसे हैं।
नहीं साहब,
आज की बात बताइए।
आज की बात तो यह है कि छोटे से कार्यक्रम के लिए हम आपको भेजते हैं, बड़ा काम तो हम बाद में सुपुर्द करेंगे। कैसे सुपुर्द करेंगे?
बेटे,
हमारी महत्वाकांक्षाओं को जब देखेगा तो तू कहेगा कि गुरुजी तो पागल हैं और सनकते रहते हैं। जब हम विदेशों में गए तो हर जगह हमसे एक ही बात कही गई कि साहब, प्राचीन काल में संत और ऋषि थे, अब संत और ऋषि रहे कहाँ? उन्होंने कहा कि यदि रहे होते तो आप उन्हें क्यों नहीं भेजते? हमारे देश में भारत का धर्म और संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। हमें ब्याह कराने तक की विधि मालूम नहीं है।
हमको हिंदुस्तानी तक बोलना नहीं आता।
अब अगर आप हमारे यहाँ कोई आदमी भेज दें तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को वे ज्ञान कराते रहेंगे।
हमारे यहाँ भी कुछ काम चलता रहेगा, संस्कार होते रहेंगे।
हम तो संस्कार भी नहीं कराते और कोर्ट में जा करके, अदालत में जा करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं।
हमको हवन विधि भी नहीं आती। आप कुछ लोगों को यहाँ भेज दें तो कुछ काम बने। बेटे,
हम भेजने की कोशिश करेंगे। जेबकट हमें विदेश नहीं भेजना।
मित्रों,
विदेशों में जितने आदमी जाते हैं वे व्याख्यान झाड़ने के लिए जाते हैं। वे समझते हैं कि हमें स्टेज पर बोलना आ गया तो जाने क्या आ गया। वे व्याख्यान देते हैं और इस तरह की वाणियां बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आश्रम की, मंदिर की सब योजनाएं लेकर जाते हैं और वहां से 5-25 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। आने जाने का खर्च अलग से वसूल कर लेते हैं।
15 हज़ार हवाई जहाज का किराया खर्च कराया, 25 हज़ार उसका ले लिया। महीने भर के अंदर 40 हज़ार का बेचारों को चाकू मारकर चले आए।
इस तरह लोग विदेश जाते हैं और 10 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ लेक्चर झाड़ करके और यहाँ वहाँ घूम घाम करके महीने भर की छुट्टी काट करके आ जाते हैं।
साहब, मुझे भेज दीजिए, मैं ऐसा लेक्चर झाड़ना जानता हूँ कि बस मजमा बांध दूंगा। बेटे,
अगर तेरे लेक्चर को हम टेप करा करके भेज दे तो? नहीं महाराज जी,
टेप करा कर मत भेजिए, मुझे ही भेज दीजिए।
चल बदमाश कहीं का। इस तरीके से सारे के सारे जेबकट आदमी लेक्चर झाड़ने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे डोलते हैं।
क्रमशः
अभी तक आपने पढ़ा कि यदि हमारे लक्ष्य उद्देश्य ऊंचे हैं तो छोटे छोटे व्यक्ति भी अपनी शक्ति जुटाकर बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं।
कार्य है विश्वभर के वातावरण का परिष्कार, सांस्कृतिक गौरव की वापसी। यही है युग निर्माण अभियान। हमेशा देवतागण भगवान के साथ युग परिवर्तन हेतु आते हैं।
ऐसा अब पुनः हुआ है। देवत्व जब भी आता है तो आचरण से शिक्षण की प्रेरणा देता है। देवता आप सभी के अंदर है। अपने देवता को पहचाने और आत्मबोध जागृत करें। यह वक्त बार बार नहीं आएगा। ऐसा न सोचे कि हम काम न करें तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। आपके बिना भी युग बदल जाएगा। यह युग परिवर्तन की वेला है। इसमें आपको घर घर जाकर बेअकली दूर करनी होगी।
हम 1 लाख संस्कृति के पुजारी, अपने धर्म के पादरी बना सके तो संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा, सतयुग आकर रहेगा। अब अंतिम समापन किस्त पढ़ें।
कांगो का संत।
मित्रों, एक बार मैं कांगो गया।
कांगो वह देश है जिसमें आदमियों की ऊंचाई और लंबाई कोई ऐसी होती है 3 और 4 फीट के बीच।
प्रायः अधिकांश आदमी नंगे रहते हैं।
औरतें पत्तों से अपना तन ढक लेती हैं। खेती बाड़ी, 3 फीट का आदमी खेती बाड़ी क्या करेगा।
वे छोटे छोटे भाले और छोटी छोटी लाठियां लिए फिरते हैं।
इन्हीं से बेचारे मेढक मार लेते हैं, चूहे चिड़िया इन्हीं को जाल में फंसा लेते हैं और भून भान कर खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन गरीबों के पास न पैसा है, न दान दक्षिणा का साधन है। उनके बीच में स्विट्जरलैंड के एक पादरी 40 साल से काम कर रहे थे। वे वहीं डेरा डाले हुए पड़े थे। उन्होंने उन लोगों से कहा कि ईसा एक भूली हुई भेड़ को, जो भटक गई थी, कंधे पर रख कर लाए थे। तो ये भूले हुए, पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी हम सेवा करने आए हैं। अब हम यहीं रहेंगे। वे वहीं रहने लगे। उन लोगों के पास न डाकखाने का इंतजाम था, न सड़कें थीं, न सिनेमा, न कोई आनंद, न आने जाने का साधन, न कोई सवारी, कोई कुछ नहीं था। जंगल में रहते थे। पानी के जहाज कभी आते थे तो वही कुछ सामान छोड़कर चले जाते थे। विदेशों से जब कोई पानी के जहाज आते थे तो हजामत बनाने के ब्लेड, चाय के पैकेट आदि ईसाई मिशन उन्हें भेज देता था। वहीं से सिला हुआ कपड़ा आ गया। इस तरह जो कुछ आ गया उसी से गुजारा कर लिया। इस तरह 40 साल से वे वहां निवास कर रहे थे।
साधु परिव्राजक, ये कौन थे? इनका नाम था पादरी, इनका नाम था साधु, इनका नाम था परिव्राजक।
मेरे मन में आया कि इनके चरणों को धोकर के पानी ले चलूं और इन बाबाजियों के ऊपर छिड़क दूं। कौन से बाबाजी?
ये 60 लाख भिखमंगे, 7 लाख गांव और 60 लाख बाबाजी, 7 इट्ठे 56 और 7 नामे 63। हर गांव पीछे 8.5 बाबाजी आते थे।
8.5 बाबाजी एक गांव में रहे तो शिक्षा की समस्या, साक्षरता की समस्या, सामाजिक कुरीतियों की समस्या, गंदगी की समस्या, पिछड़ेपन आदि की जितनी भी समस्याएं थीं, 6-8 आदमियों ने ठीक कर दी होती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
शुरू से आखिर तक ढोंग,
देवताओं की लगाम पकड़ करके, देवताओं की आड़ का बहाना लेकर के सब बाबाजी उस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, संतोषी माता की पूजा की आड़ में, धर्म की आड़ में जो मन में आए वह करते हुए पाए जाते हैं। क्या करना पड़ेगा?
बेटे,
फिर आपको वहाँ से वापस चलना पड़ेगा, जहाँ की हमारी संत परंपरा के अनुरूप हम घर घर जाएं और जन जागरण का शंख बजाएं और कायाकल्प करने में समर्थ हो जाएं। यह हमारा लंबा वाला प्लान है। लंबे वाले प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? जलता हुआ दीपक जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश पैदा करेगा।
जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जहाँ भी जाएगा दूसरे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व को ठीक कर सकता है। वाणी वाला वाणी को ठीक कर देगा। हाँ साहब, बोलना सिखाए। हम आपको बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे?
एक बार एक घर में चोर घुस गया।
घर वाले चिल्ला रहे थे कि घर में चोर आ गए। गांव वाले, मोहल्ले वाले दौड़कर आ गए।
कहाँ गया चोर? चोर ने देखा कि यह तो बड़ी संख्या आ गई, अब क्या करना चाहिए?
घर वाले चिल्ला रहे थे कि चोर को पकड़ो। चोर भी चिल्लाने लगा कि चोर को पकड़ो।
देखो वह गया, इधर गया।
भीड़ भागती रही और चोर भी उन्हीं के बीच भागता रहा और चिल्लाता रहा। चरित्र से होगा लोक शिक्षण।
इसका क्या मतलब है?
बेटे, जब घर का मालिक कहे कि चोर को पकड़ो, तब आप भी कहिए कि चोर को पकड़ो।
चोर कौन है? मालूम नहीं कौन है।
नैतिकता को भगाओ, पाप को भगाओ, परंतु भगाएगा कौन?
दुनिया ने पाप को भगाया, पर वही चोर वाली बात सामने है। क्या करना पड़ेगा? हम में से जो भी आदमी इस मार्ग पर आएगा, अपना चरित्र लेकर के आएगा। लोक शिक्षण कैसे हो सकता है?
चरित्र से।
वाणी हो चाहे न हो, आप गूंगे हो तो कोई हर्ज की बात नहीं।
पांडिचेरी के अरविंद घोष गूंगे हो गए थे।
उन्होंने जीभ से बोलना बंद कर दिया था।
महर्षि रमन गूंगे हो गए थे।
उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था।
बिना बोले भी आप हवा को ठीक कर सकते हैं।
आपको बहुत बोलना आता है, पर आप हैं क्या?
हमको यह बताइए।
असल में प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ेगा। जिस काम के लिए हम आपको भेजना चाहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व और चरित्र करेगा और कोई चीज नहीं कर सकती। वेश्याएं अपने जीवन में हजारों आदमियों को भरा हुआ बना देती हैं। शराबी अपने जीवन में सैकड़ों शराबी पैदा कर लेते हैं। ज्वारी अपने जीवन में 900 नए ज्वारी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चरित्र, उनका बोलना, उनका वचन और कर्म दोनों मिले हुए हैं। और आप अपनी जिंदगी में एक संत पैदा न कर सके, एक भला आदमी पैदा न कर सके,
एक सज्जन पैदा न कर सके, एक राम भक्त पैदा न कर सके। क्यों?
इसलिए कि आपके चरित्र और आपकी वाणी में तालमेल नहीं है। आपका चरित्र अलग है और वाणी अलग है, तो कैसे असर पड़ेगा?
नहीं साहब,
असर पड़ेगा। नहीं बेटे, तेरा असर नहीं पड़ेगा। अंकुश का नाम है तप। अगले दिनों क्या करना पड़ेगा? अगले दिनों परिव्राजक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके लिए पहली बार आप आए हैं, जिसका आप श्रीगणेश कर रहे हैं। आपको श्रीगणेश करने वालों में शामिल किया, सौभाग्य दिया गया।
अगर यह योजना चलेगी तो क्या होगा?
भावी योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम यह प्रयत्न करेंगे कि आदमी को तपस्वी बनाएं। तपस्वी से क्या मतलब है? आदमी को धूप में खड़ा करेंगे, धूप में नहीं खड़ा करेंगे। उसे अपनी हवस और अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना सिखाएंगे। तप इसी का नाम है। यही धूप में खड़ा होना है। आदमी अपने आप, अपनी शैतानी और अपनी कमजोरियों से लोहा ले। भीतर वाला कहता है कि हम तो यह करेंगे और बाहर वाला कहता है कि हम नहीं करने देंगे। इस तरह जो जद्दोजहद होती है और इस जद्दोजहद में जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसी का नाम तप है। आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठाने के लिए, आपकी जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, बुरी आदतों का दमन करने के लिए, आपके ऊपर जो अंकुश लगाने पड़ते हैं, उनकी रोकथाम करनी पड़ती है, उसी का नाम तप है। नहीं साहब, तप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
बेटे,
तप करने से भगवान को क्या मिलता है?
इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाता।
केवल होता यह है कि तप करने से हमारी गंदी आदतें छूटती हैं।
बस, जितनी गंदी आदतें छूटती जाएंगी, उतना ही भगवान प्रसन्न हो जाएगा।
नहीं साहब,
खाना नहीं खाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा।
क्यों? अगर तू खाना नहीं खाएगा तो भगवान को क्या मिलेगा? इसलिए क्या है बेटे, जिस भावी तपस्वी जीवन की योजना को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं, वह हमारे रजत जयंती वर्ष की सबसे शानदार योजना है। हम अपने इसी कुटुंब में से हजारों की तादाद में परिव्राजक निकालेंगे।
उनकी क्या विशेषता होगी? पहली विशेषता होगी उनका तपस्वी जीवन, जिसकी झांकी हम कल करा चुके हैं, जिसके बारे में हमने कल केवल लोकाचार और मर्यादा वाला हिस्सा बताया था, दृष्टिकोण वाला हिस्सा, अंतरंग वाला हिस्सा नहीं बताया था।
आपको अपने भीतर वाले की किस तरीके से तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, यह स्थायी विषय की बात है और यह तब की बात है जब आप हमारे पास रहेंगे। तब हम आपके भीतर वाले हिस्से को हथौड़े से तोड़कर फिर नया ढालेंगे।
ज्ञान बनाम व्याख्यान। मित्रों, अभी तो हमने मर्यादा बताई थी, शिष्टाचार बताया था, लोकाचार बताया था, पंचशील बताए थे। वह केवल मर्यादा थी, कानून थे, व्यवस्था थी। यह केवल कानून व्यवस्था के अंतर्गत पांच बातें बताई थी। वह चरित्र संशोधन नहीं था।
चरित्र संशोधन के लिए, यम नियमों के लिए हम आपको दावत देंगे और कहेंगे कि आप आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे वातावरण में रहिए। फिर क्या करेंगे?